Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharvavediya Brahman Bhag ki Prashnopanishad ka vichar is satra mein prarambh hua. Mundak Upanishad ke vyakhyan roop प्रश्न उपनिषद में सुकेश आदि छह ऋषि आचार्य पिपला जी के पास जाते हैं, उन्हें अपनी जिज्ञासा बताते हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर आचार्य पिपला जी देते हैं। इत्याकारक जो आख्यायिका है, कथा है, यह कथा है प्रश्न उपनिषद प्रतिपाद्य जो विद्या है उसकी प्रशंसा के लिए। विद्या की प्रशंसा जब होगी तो जिज्ञासु विद्या जिस ग्रंथ से प्राप्त होती है उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त हो जाएगा। मनुष्य का स्वभाव है, जिसकी महत्ता सुनता है, चाहता है वह हमारे पास आ जाए, वो साधन हमें मिल जाए। इसलिए प्रशंसा का भी बड़ा उपयोग होता है। साधन विषय को उत्कट इच्छा उत्पन्न करने के लिए, तो इसी उद्देश्य से यहां आख्यायिका भी है और आख्यायिका के अनुसार सुकेश सत्यकाम गार्ग्य कौशल्य भार्गव और कबंध नाम के छह ऋषि ऐसे हैं जो अपर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म के रूप में समझ बैठे हैं और अपर ब्रह्म के ही चिंतन में संलग्न हैं। अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले को उसकी वह उपासना जब परिपूर्ण हो जाती है तो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उपासना का फल परब्रह्म की जिज्ञासा मन में प्रकट हो जाती है। तो ये छह के छह ऋषि ब्रह्म पर हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं का अर्थ है अपर ब्रह्म को पहले सर्वोत्कृष्ट मान करके उसकी उपासना में रत है। ब्रह्मनिष्ठ हैं का अर्थ है उपासना कर रहे हैं और उनकी वह उपासना परिपक्व हो गई तो उनके अंदर पर ब्रह्म की जिज्ञासा हो गई। कोई विद्यार्थी एक वर्ष तक किसी कक्षा का निर्धारित जो कोर्स है उसका ठीक ठीक अध्ययन कर लेता है, परिश्रम करके, और परीक्षा में उत्तर लिख लेता है। अध्ययन यदि ठीक किया है वर्ष भर तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर लिखने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी और वो पास होगा ही। तो पास होगा तो उसी कक्षा में बैठने का अधिकारी नहीं रहेगा, उससे आगे वाली कक्षा का वो अधिकारी हो जाता है। ऐसे ही जो कर्म उपासना करके शुद्ध चित्त वाले हो जाते हैं, समाहित चित्त वाले हो जाते हैं। तो शुद्ध तथा समाहित चित्त में परब्रह्म को जानने की इच्छा हो जाती है, परब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है। इसलिए यहां पर एक विशेषण बताया गया कि परम ब्रह्म अन्वेषमाना, ये छह के छह ऋषि पर ब्रह्म का अन्वेषण कर रहे हैं, का मतलब पर ब्रह्म जिज्ञासु बन गए हैं, पर ब्रह्म का बोध प्राप्त करना चाहते हैं। तो विद्यार्थी देखता है जब हाई स्कूल में अच्छे नंबर लेकर के पास हो गया तो चाहता है कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे एडमिशन मिल जाए, जो प्रसिद्ध कॉलेज हो। ऐसे ही इन छह ऋषियों के अंदर परब्रह्म जिज्ञासा हुई तो परब्रह्म की शिक्षा जिस गुरुकुल में दी जाती है, चाह रहे हैं उस गुरुकुल में एडमिशन मिल जाए, प्रवेश मिल जाए और परब्रह्म के अध्यापक के रूप में, आचार्य के रूप में बड़ी प्रसिद्धि थी आचार्य पिपलाद जी की, बहुत प्रसिद्ध थे उस समय, सब लोग जो ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापक के विद्यार्थी अच्छे नंबर से परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उनके पास ट्यूशन के लिए लाइन लग जाती है, चाहते हैं कि इनसे हम पढ़ लें तो हमारे भी उनके तरह ही नंबर आ जाएंगे, हम भी टॉप कर लेंगे। अभी पिछले वर्ष का रिजल्ट आया 12वीं का, वो आजकल के कोर्स भी कई एक है ना, तो इंटरनेशनल वाला जो था भारत में भी चलते हैं, तो यहां कांदीवली में एक लोहाना परिवार रहता है, भारत में वो दूसरे नंबर पर आया 12वीं में, पहले नंबर का कोई कलकत्ता वाला है। और फिर उसके माता पिता बताने लगे, यानी उसके नंबर है 99.25, केवल तीन नंबर कटे हैं उसके, बाकी पूरे नंबर आए हैं। तो वो जिनके पास ट्यूशन पढ़ता था उन्होंने इनको पूछा कि हम अपने प्रचार प्रसार के लिए इसका नाम दे क्या, ये भी हमारे पास पढ़ता था करके कहा दिया, तो उसकी फीस बढ़ गई, तीन गुना हो गए कहते हैं। तो ऐसा होता है ना, तो ऐसे ही उस समय आचार्य पिपलाद जी परब्रह्म विद्या के प्रख्यात आचार्य थे, बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी, इसलिए ये सब के सब परब्रह्म की जिज्ञासा से संपन्न सुकेश आदि ऋषि आचार्य पिपलाद जी के पास आते हैं। इसलिए कहा भगवंतम पिपलादम उपसन्ना, जो परब्रह्म विद्या का उपदेश करने में समर्थ हैं ऐसे आचार्य पिपलाद जी के पास विधिवत आए। क्या समझ करके आए, तो कहे ये सहवै तत्सर्व वक्षति इति, ये आचार्य पिपलाद जी हम जिसे जानना चाहते हैं वो सब बताएंगे, इस उद्देश्य से आचार्य पिपलाद जी के पास आए। और अपने पास आए हुए जिज्ञासु को वेद बताता है ब्रह्म विद्या के आचार्य को चाहिए कि जिससे उसकी जिज्ञासा शांत हो ऐसा उपदेश करें अपने पास में रख करके। तो आचार्य पिपलाद जी भी वेद भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए आए हुए छह ऋषियों को आदर से अपने पास रखते हैं, लेकिन ये नहीं कि आए और तुरंत ही जो जानना चाहते हैं वो बिना योग्यता निर्धारण किए ही बता दें। वो तो फिर उल्टे घड़े पर बारिश होना जैसा हो जाएगा। इसलिए आचार्य पिपलाद जी उन्हें जो बताते हैं वो द्वितीय कंडिका में श्रुति बता रही है। तान ह स ऋषि उवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्याम सर्वं ह वो वक्ष्याम इति। अपने पास विनय पूर्वक शास्त्र जैसा बताता है ऐसे आए हुए सुकेश आदि ऋषियों को आचार्य पिपलाद जी ने कहा। स ऋषि वाच क्या कहा? तो कहा यद्यपि आप लोग पहले से तपस्वी हो और विद्या अध्ययन करने के लिए पहले गुरुकुल में वास कर चुके हो और आपके अंदर श्रद्धा भी है, तो भी अभी हमारे गुरुकुल में जिस विद्या को प्राप्त करना चाहते हो उस विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको एक वर्ष तक निवास करना पड़ेगा, प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जो कॉलेज आदि होते हैं तो उसमें जो जाए तुरंत ही एडमिशन मिले ऐसा तो नहीं होता ना, प्रतीक्षा करनी होती है। कहते हम आपको आपके जिज्ञास्य अर्थ को यथामति बताएंगे, लेकिन पहले जैसे आप अपर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए वेद अध्ययन के समय गुरुकुल में रहें ऐसे और एक वर्ष रहो यहां। भूय एव तपसा, और यहां तप है ब्रह्म विद्या, पर ब्रह्म विद्या के अनुकूल तप, वो पर ब्रह्म विद्या के अनुकूल तप है इंद्रियों का और मन का निग्रह, एकाग्रता। तो इंद्रिय तथा मन की एकाग्रता रूप तप करते हुए एक वर्ष यहां पर निवास करो, और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य से निवास करो। ब्रह्मचर्य है गुरुकुल में रहते समय अतिथि बनकर के नहीं रहना होता, पहले आश्रमों में कहीं कुछ वेतनधारी सेवक नहीं रहा करते थे, जो गुरुकुल में यानी आश्रमों में निवास करने वाले साधक लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं, वही सब कार्य करते थे। यहां तक कि वो भगवान कृष्ण भी संदीपनी ऋषि के यहां रहे तो वो लकड़ी आदि लेने के लिए स्वयं ही जाते थे ना, भागवत कथा के माध्यम से सुनते ही गए ना। भगवान राम भी यानी चाहे राजा के पुत्र हो या गरीब के पुत्र हो, सभी के सभी को जो आश्रम में होने वाले कार्य हैं उन कार्य को बांट करके करना हुआ करता था। तो ऐसे ही ब्रह्मचर्य का अर्थ ही होता है कि गुरुकुल में रहते समय ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुकुल के जो भी कार्य हैं उन कार्यों का संपादन करते हुए रहना है। ये नहीं कि घंटी कब लगेगी, चाय कमरे में कब पहुंचेगी, इसकी प्रतीक्षा करते हुए रहे, ऐसा नहीं होता है। ये तो देवराज इंद्र और असुर राज विरोचन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रजापति के आश्रम में जाता है ना, तो गए तो कहते हैं 32 वर्ष पहले न तो कोई बात की उन्होंने प्रजापति ने इंद्र से और विरोचन से, न कुछ किया, न जाते ही कोई कमरा खोला। उन्होंने अपनी पर्ण कुटियाएं बनाई और अपने ही खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करते रहे और आश्रम की सेवा करते हुए 32 साल बिताए। उसके बाद प्रजापति ने पूछा इंद्र को और विरोचन को, क्या आप कौन हो और किस लिए यहां निवास कर रहे हो? तब जाकर के उन्होंने बताया आत्मज्ञान के लिए हम आपके पास आए हैं, तो उपदेश किया। एक बार में इंद्र को समझ में नहीं आया, दूसरे बार में नहीं, तीसरे बार में नहीं, ऐसे 4 पर्याय में उपदेश किया 101 वर्ष। और बार बार आते रहे, 3 बार तो 32-32 वर्ष रहे और चौथी बार 5 वर्ष रहने के लिए कहा। ऐसे 101 वर्ष रहे तो कोई सुविधा देकर के नहीं रखा, अपने जीवन के लिए अन्न पान आदि की व्यवस्था स्वयं करनी है और आश्रम की सेवा करनी है, साथ साथ में जो पढ़ाया जा रहा था उसका चिंतन करना है, ऐसे रहते थे। ये सब कार्य करते हुए रहने का नाम है ब्रह्मचारी का कर्म, ब्रह्मचर्य कहलाता है। और वो ब्रह्मचारी का कर्म होता है सेवा शुश्रूषादि, वो करते हुए निवास करो 1 वर्ष। वो सारे कर्म और उपासनाएं करके अधिकारी बन करके गए हुए हैं, तब भी उनको कहा जा रहा है कि ऐसे 1 वर्ष तक रहो और मजबूरी में नहीं रहना। साथ में भी कहा बड़ी भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ रहना। इसलिए श्रद्धया तो 3 विशेषताएं बताई, श्रद्धा से रहो लेकिन बिना कुछ किए नहीं रहना, ब्रह्मचर्य के साथ रहो का मतलब ब्रह्मचारी का जो कर्म है सेवा शुश्रूषा आदि वो करते हुए रहो। और जब चाहे जो चाहे मन करे और जीवा मांगे वो खाते हुए नहीं रहना है, तपस्या करते हुए रहना है। समय समय पर जो आश्रम में मिलेगा वो प्रसाद समझ करके खाते हुए रहना है, तब तो तपस्या मानी जाएगी, मन और इंद्रिय का निग्रह। ऐसे 1 वर्ष तक निवास करो और उसके बाद फिर कहते हैं यथा कामम प्रश्नान पृच्छत, फिर आप 6 लोगों को जो इच्छा हो जानने की, जिस पदार्थ को जानने की इच्छा है उस पदार्थ विषयक अपने इच्छा के अनुसार प्रश्न करो और उसका उत्तर यदि हमें आता है तो देंगे। तो ये कहते हैं यदि विज्ञास्याम, यानी हम आपने पूछे हुए अर्थ को जान लेंगे, यानी हमें जानकारी है, ज्ञान है, तो बता देंगे, ऐसा एक अर्थ निकलता है। का मतलब फिर मान लो कि प्रश्न यानी जिस अर्थ को ये जानना चाहते उस अर्थ विषय किया और एक वर्ष तक सेवा लेने के बाद ये कहें कि ये आपने जो पूछा है इस अर्थ को हम नहीं जानते हैं और किसी के पास जाओ, तो एक वर्ष की सेवा आदि ये सब ऐसी चली जाए, ये नहीं। तो भाष्कर भगवान ने ये कहा कि यदि शब्द का वो अर्थ नहीं निकालना, यदि शब्द है आचार्य पिपला जी की इतनी प्रसिद्धि है उनके पास आए हैं का अर्थ है कि वो सब जानते हैं, क्योंकि उनको पहले ही कहा ना कि ये सहवै तत् सर्वम वक्षति, हम जिसको जानना चाहते हैं वह आचार्य पिपला जी बता सकते हैं, उनके अंदर सामर्थ्य है, ऐसा इनको निश्चय है। तो भी आचार्य पिपला जी कह रहे हैं यदि मैं जानूंगा तो बताऊंगा का अर्थ है आचार्य पिपला जी अपने निराभिमानिता को प्रकट कर रहे हैं, उनको अपने विद्या का अभिमान नहीं है, अभिमान को प्रकट नहीं करना चाहते, है ही नहीं अभिमान उनके अंदर, तो निराभिमानिता दिखाने के लिए यदि शब्द है। और सर्वम ह वो वक्षाम, वह यानी आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न किए जाएंगे उनके उत्तर हम देंगे आप लोगों के लिए। आचार्य पिपला जी ने एक प्रकार से इस प्रकार का आश्वासन दिया रहने का, तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि एक वर्ष तो बड़ा लंबा समय होता है, उन्होंने सोचा आत्मज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए तो भगवान ने कहा है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कई कई जन्म बीत जाते हैं तब जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इंद्र को भी 101 वर्ष रहना पड़ा और हमको तो मात्र आचार्य पिपला जी एक वर्ष मात्र कह रहे रहो, तो ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया और एक वर्ष तक जैसा आचार्य पिपला जी ने कहा वैसे ही रहे, तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ। एक वर्ष बीतने के बाद जो 6 ऋषि बताए थे ना, उनका जो क्रम है, पहले हैं सुकेश ऋषि, दूसरे हैं सत्यकाम, तीसरे हैं गार्ग्य, चौथे हैं कौशल्य, पांचवें हैं भार्गव और छठवें हैं कबंधी नाम के ऋषि, प्रथम मंत्र में सब उनका क्रम आया है, लेकिन प्रश्न करते समय उल्टा क्रम है, छठवें ऋषि पहले पूछेंगे, पांचवे दूसरे नंबर पर आएंगे, चौथे तीसरे नंबर पर आएंगे। तो कबंधी ऋषि एक वर्ष के बाद में आकर के आचार्य पिपला जी से प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न बताया जा रहा है तीसरे मंत्र में। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ते इति। तो अथ शब्द का अर्थ है एक वर्ष के पश्चात, साधना में एक वर्ष बिता दिया, फिर 6 ऋषियों में से कत्य के गोत्र में उत्पन्न हुए कबंधी नाम के ऋषि ने आचार्य पिपला जी के पास विनयपूर्वक आकर के उनसे पूछा, तो अकेली आए और बाकी 5 नहीं आए ऐसा नहीं, तो रोज जिस स्थान पर वे बैठते थे उनके स्वाध्याय कक्ष में, तो 6 के 6 ऋषि आए, प्रतिदिन ही मिलते थे प्रणाम आदि करके क्या करना है इसकी आज्ञा लेते थे। तो एक वर्ष के पश्चात फिर जब आए तो 6 के 6 7 में जहां स्वाध्याय कक्षा में बैठे थे, स्वाध्याय कक्ष में आचार्य पिपला जी, वहां पर आचार्य पिपला जी ने 6 ऋषियों को कहा बैठने के लिए, तो बैठे। और फिर कबंधी नाम के ऋषि ने आचार्य पिपला जी को प्रसन्न मुद्रा में देख करके तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया के अनुसार प्रसन्न चित्त देखा। एक वर्ष का समय भी बीत गया तो प्रश्न किया उनकी अनुमति लेकर के। बाकी 5 ऋषि भी बैठे हुए हैं, सबके सब एक साथ ही रहते थे। और प्रश्न किया कि हे भगवन, इमा प्रजा कुतः प्रजायन्ते, ये जो प्रजा है यानी मनुष्यादि हैं, सारा संसार ये किससे उत्पन्न होता है? संसार का यानी स्थूल शरीरों का उत्पादक कौन है, ये पूछा।